नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार, प्लस टू उच्च विद्यालय नगर नौसा में इतिहास शिक्षक रूप में कार्यरत हैं। बच्चों, आज हम भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विभिन्न संप्रदाय में भक्ति आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में अनेक नए धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का विकास हुआ। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने एक नई धार्मिक परंपरा का विकास किया। यद्यपि इनके आराध्य देव दो प्रमुख देवता विष्णु और शिव ही थे, उत्तरी भारत में कबीर और गुरु नानक ने भक्ति की निर्गुण परंपरा को जन्म दिया। इस्लाम के प्रचार के साथ साथ सूफीवादी परंपरा भी प्रभावशाली बन गई। इन नए धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों ने धर्म को एक नया स्वरूप प्रदान किया, साथ ही सामाजिक असमानताओं को मिटाने और एक समन्वित समाज के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील हुई। भक्ति आंदोलन वह धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर की उपासना और जीवन बंधनों से मुक्ति का मार्ग इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना द्वारा ढूंढने का प्रयास किया गया। इसमें ईश्वर से व्यक्ति की आध्यात्मिक एकाग पर जोर दिया गया। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग और तप मार्ग से सहज था। इसके लिए ना तो पुरोहितों की आवश्यकता थी और ना धार्मिक कर्मकांडों की। भक्ति की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदों और उपनिषदों में इसका आरंभिक स्वरूप देखा जा सकता है, परंतु उस समय तक यह प्रभावशाली नहीं था। संभवतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बौद्ध और जैन धर्मों की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी चुनौती का सामना करने के लिए ब्राह्मण धर्म में भी भक्ति की अवधारणा बढ़ी। भक्ति की अवधारणा का विकास भागवत संप्रदाय के उदय के साथ हुआ। इसके प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। मथुरा भागवतों का प्रमुख केंद्र था। इस संप्रदाय का दार्शनिक स्वरूप श्री मद्भवत भागवत गीता महाभारत में देखा जा सकता है। धार्मिक आंदोलन एक ही साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बन गया। भक्ति आंदोलन का विकास दो चरणों में हुआ। नंबर 1 7वीं से 13वीं शताब्दी, नंबर 2 13वीं से 16वीं शताब्दी मध्य। भक्ति आंदोलन दो स्वरूप में प्रकट हुआ, नंबर 1 निर्गुण और नंबर 2 सगुण। निर्गुणवादी निराकार प्रभु की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे, परंतु सगुणवादी राम या कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन अलवार वैष्णव। अलवार का शाब्दिक अर्थ ईश्वर के गुणों में गोता लगाने वाला होता है। अलवार संतों ने दक्षिण भारत तमिलनाडु में वैष्णव उपासना अथवा विष्णु भक्ति को व्यापकता प्रदान की। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक विष्णु की स्तुति में भजन करते भ्रमण करते थे। इन संतों में तिरुमल सई, तिरुमंगई, तिरुपान, नमलाड़ और महिला संत अंडाल नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नैनार शैव। अलवारों के विपरीत नैनारों शिव भक्तों ने शिव को अपना आराध्य देव मानकर उनकी भक्ति पर बल दिया। 63 नैनार संतों का उल्लेख साहित्य परंपराओं में किया गया है। इन लोगों ने शैव धर्म को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। अलवार संतों के समान नैनार संत भी विभिन्न वर्गों एवं जातियों से आते थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन, इसी काल में उत्तरी भारत में भी धार्मिक उफान देखा गया तथा यहाँ भी भक्ति आंदोलन की अविरल धारा प्रवाहित हुई। उत्तरी भारत में भक्ति की दो शाखाएं प्रभावशाली थी, सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सगुण परंपरा का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से रामानंद और चैतन्य ने किया। रामानंद राम मार्गी एवं चैतन्य कृष्ण मार्गी थे। निर्गुण परंपरा का विकास कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल ने किया। सगुण परंपरा के प्रमुख संत रामानंद, उत्तरी भारत में भक्ति मार्ग का प्रसार करने में रामानंद का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में इलाहाबाद के निकट एक कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चैतन्य ने कृष्ण की उपासना एवं भक्ति को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। उनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत कबीर। निर्गुणवंथी संतों में कबीर अग्रणीय हैं। वे दिल्ली के निकट सुल्तान सिकंदर लोदी 15वीं शताब्दी के समकालीन थे। कबीर संत रामानंद के शिष्य थे। उनके आरंभिक जीवन के विषय में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैष्णव परंपरा की जीवनियों के अनुसार कबीर, जिसका अर्थ महान होता है, एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें उन्हें जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया। बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, ऊंच नीच कबीर के अनुयायी बन गए थे। ये कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश बीजक में संग्रहित है। गुरु नानक, निर्गुण परंपराओं के दूसरे महान संत हुए गुरु नानक। उनका जन्म लाहौर के निकट रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी ग्राम नानकाना साहब पाकिस्तान में एक खत्री परिवार में 1469 में हुआ था। मीराबाई 16वीं शताब्दी में भक्ति की भावना को विकसित करने में मीराबाई का भी बहुमूल्य योगदान था। संभवतः उनके गुरु रैदास थे, जो व्यवसाय से चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। वह आरंभ से ही कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहती थी। सूफीवाद 13वीं शताब्दी में जिस समय भक्ति आंदोलन का प्रसार हो रहा था, उसी समय उत्तरी भारत में सूफीवाद का भी विकास हो रहा था। सूफीवाद ने इस्लाम एवं कुरान की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी इस्लाम के कर्म कांडी एवं कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, प्रेम एवं सद्भावना का प्रचार किया। सूफी का अर्थ, सूफी शब्द 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में प्रचलित हुआ। यह इस्लामी ग्रंथों में प्रयुक्त तवस्सुफ के लिए व्यवहार में लाया गया। इस शब्द की उत्पत्ति सूफ अर्थात ऊनी वस्त्र से लगाई गई है। आरंभ में अरब प्रदेश में सूफी उन्हें कहा गया जो सूफ या खुरदार ऊनी वस्त्र पहनते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द सफा से निकला है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर या रसूल कहलाया। अरब प्रदेश में प्रचलित मान्यताओं से भिन्न एक नया धार्मिक दर्शन किया। वह व्यवहारिक और सरल था। उसने एकेश्वरवाद, आत्मा की अमरता और नैतिक आचरण के नियमों के पालन पर जोर दिया। भारत में विभिन्न सूफी सिलसिले का विकास हुआ। ये सिलसिले थे चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। इस प्रकार हमने 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विभिन्न धार्मिक विचारों वाले व्यक्तित्वों का वर्णन किया।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो, तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।